यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि और पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से सात मार्ग से होकर भाग जाएंगे। इस आजमाइश के द्वारा इजहार अपनी बुद्धि पर निर्भर रहने वाले रवैये को बदल पाया। दरअसल जब इजहाक ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन ऐसी स्थिति में किया जहां आसानी से पालन नहीं कर सकता था, उसने तुरंत ही आशीषें प्राप्त नहीं कर ली। बजाय इसके ऐसा लग रहा था कि वह अधिक मुश्किल में पड़ रहा है, लेकिन इजहाक ने ना तो कोई कुड़कुड़ाहट दिखाई ना ही कोई नाराजगी दिखाई। वो परमेश्वर पर निर्भर रहा और समाधान प्राप्त किया, और उसने इस बात का एहसास किया कि वह अपने विचारों का इस्तेमाल कर रहा था। इस प्रक्रिया के द्वारा इजहाक ने अपने विचारों को तोड़ डाला और उसका प्राण संपन्न हो गया, और फिर परमेश्वर ने उसे उसकी कल्पनाओं से परे आशीष दी। ये है परमेश्वर की आशीषें जो उन लोगों को दी जाती हैं जिनका प्राण संपन्न होता है। आशीषों को प्राप्त करने की तीन शर्तों को हम देख रहे हैं। सबसे पहला वो था परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचनों के विषय में। मैंने आपको बताया था कि परिश्रम पूर्वक अपने प्रभु परमेश्वर की आवाज को सुनने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि उसे सुनना और ज्ञान के रूप में एकत्र करना है, वरन इसका अर्थ है कि जो कुछ हम सुनते हैं उसका पालन करना है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आइए अब हम आज्ञाओं को देखेंगे। बाइबल कहते हैं कि वो सब आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूं उनको चौकसी से पूरी करना है, उसकी सब आज्ञाएं। हमारे लिए आशीष प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उसकी सभी आज्ञाएं माने। आज्ञाएं वो चीजें हैं जिन्हें परमेश्वर ने स्वयं हमें आदेश दिया है करने के लिए, और 10 आज्ञाएं उसका सबसे बेहतर उदाहरण है। परमेश्वर के सभी वचनों में आज्ञाएं वे हैं जिन्हें परमेश्वर ने बहुत जोर लगाकर कहा है। आज्ञा शब्द इसमें अपने आप में विवशता पाई जाती है, इसलिए यह कुछ ऐसा नहीं जिसमें हमारे पास विकल्प हो। यह कुछ ऐसा है जिसे साधारणता हमें करना अवश्य है, और इसे भी बढ़कर यह पिता परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जो सेनाओं का यहोवा है, जिसका मतलब यह है कि वो होना चाहिए। 10 आज्ञाएं उसकी आज्ञाएं हैं जो मानी जानी चाहिए। मान लीजिए आप दो बातें कहते हैं, पहली बात कि सावधानी से गाड़ी चलाइए और दूसरी बात गाड़ी चलाते हुए अपनी सीट बेल्ट लगाइए। ये दोनों बातें एक दूसरे से बहुत अलग अलग है। जब आप अपने बच्चे को कहते हैं कि आपको अवश्य ही गाड़ी चलाते हुए अपनी सीट बेल्ट लगानी चाहिए, निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल अलग है जब आप अपने बच्चों को सम्मति देते हैं कि सावधानी से गाड़ी चलाइए। ये आज्ञा है, यह कुछ ऐसा नहीं जिसे वो चाहे तो करें या चाहे तो ना करें। सावधानी से गाड़ी चलाइए, इसका अर्थ बहुत गहरा हो सकता है, लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हैं आपको अवश्य ही सीट बेल्ट लगानी चाहिए। ये सीधा आपके जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए आप उन्हें कहते हैं कि अवश्य ही वो सीट बेल्ट लगाएं। यह उनके जीवन से जुड़ी हुई बात है, यदि दुर्घटना होगी तो वो मर सकते हैं, इस कारण से ये कानून के अनुसार अवश्य है। जैसे कि उदाहरणों में हम देखते हैं, परमेश्वर की ज्यादातर आज्ञाएं जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई है, आशीषों और श्रापों से जुड़ी हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि आप आज्ञाएं ना माने तो यह उद्धार की समस्या बन सकती है। लेकिन कुछ मसीही उन्हें आज्ञा मानना बोझ लगता है, सामान्य रूप से कहें तो उन्हें मानना उन्हें मुश्किल लगता है। हालांकि इसमें उनका अनंत जीवन पाया जाता है, लेकिन तो भी उन्हें मानना मुश्किल लगता है, जिसका मतलब यह है कि वो अपने आधे हृदय से अपना मसीह जीवन जीते हैं, यहां तक कि मरते समय उनके पास स्वर्ग जाने की निश्चितता तक नहीं होती। आपको अपना उद्देश्य नए यरूशलेम पर रखना है, स्वर्ग लोक पर कभी नहीं रखना है। अवसर ऐसे हो सकते हैं कि आप पीछे फिसल जाएं और नरक में चले जाएं। आपको अपना उद्देश्य स्वर्ग लोक पर स्थापित नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आज्ञाएं कुछ ऐसी नहीं जो वैकल्पिक हो हमारे लिए, और यदि हमारे पास इच्छा हो उन्हें मानने की, तो वह वास्तविकता में कठिन चीजें नहीं है मानना। व्यवस्था विवरण 30:11-14 पद कहता है, देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है। ये तेरे लिए अनोखी नहीं है और ना ही दूर है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो यह मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और ना यह तो आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। और ना यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है ताकि तू इस पर चले। उन्हें लेने के लिए क्या हमें आकाश पर चढ़ना होगा? क्या हमें विदेशों से आयात करना होगा? नहीं, ये आपके अंदर है, ये यहां से निकलता है। आप उसे सुन सकते हैं, अपने मन और दिमाग में रख सकते हैं, अपने हृदय में रख सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं जिसे आप पैसे से खरीदें या फिर आपसे छिन जाएं। ये आप में है। वचन हमेशा इस पुलपिट से दिया जाता है, इसलिए ये सब आप बाइबल में देख सकते हैं। जब मैंने आपको कहा था कि जीवन के बीज श्रृंखला को आप 10 बार सुने, 3 राज्यों की कथा को 2 बार सुने, पढ़ें और बाइबल को पढ़ें, वो जो हृदय से पालन करना चाहते थे अवश्य ही उन्होंने महसूस किया होगा कि इसे मानना मुश्किल नहीं है। और दूसरी तरफ वो जिनके पास इच्छा नहीं थी पालन करने की, मानने की, अवश्य ही उन्हें लगा होगा कि ये बड़ा बोझ है उनके लिए। आपने बहुत से बहाने और बहुत से कारण बनाए होंगे कि आप पालन नहीं कर पा रहे हैं। पहला यूहन्ना 5:3 कहता है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से प्रेम करना उसकी आज्ञाओं को मानना है, और आज्ञाओं को मानना परमेश्वर से प्रेम करना है, और परमेश्वर से प्रेम पाना है। चरवाहे के वचनों का पालन करना चरवाहे से प्रेम करना है, और चरवाहे के द्वारा प्रेम पाना है। वो जो मुझसे प्रेम करते हैं इस तरह से, वो अपने सपनों में मुझसे मिलते हैं। निर्भर करता है कि आप चरवाहे से कितना प्रेम करते हैं। निश्चित तौर पर आप मुझे अपने सपने में देखते हैं। अगर आप नहीं देखते तो आप मुड़कर सोचिए अपने बारे में कि अपने रोजमर्रा के जीवन में आप चरवाहे के बारे में कितना सोचते हैं। क्या आप चरवाहे को याद करते हैं? नहीं, इसलिए मैं आपके सपने में नहीं आता, क्योंकि मेरा आनंद के साथ स्वागत नहीं होता, मुझे ग्रहण नहीं किया जाता। परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उनसे प्रेम रखता हूं, जो परिश्रम से मुझे ढूंढते हैं वो मुझे पाते हैं। क्योंकि आप परिश्रम से मुझे नहीं ढूंढते इसलिए आप मुझे नहीं पाते। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता कि आपके पास आऊं। बहुत सी संख्या में लोग अपने सपनों में मुझसे मिलते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। परमेश्वर की आज्ञाएं उनके लिए कठिन नहीं होती जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बजाय इसके वो आज्ञाओं में पाए जाने वाले पिता परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन को मानना उन्हें आनंदमय लगता है। आज्ञा पालन करना और मानना वो आनंद और खुशी का स्रोत होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 10:13 में लिखा है, और यहोवा की जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करें जिससे तेरा भला हो। यहां पर लिखा है हमारी भलाई हमारी खुशी के लिए ये आज्ञाएं हमें दी गई है। इसीलिए यदि हम परमेश्वर के इस हृदय को समझें तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे जो हमें कहता है कि हम वो काम स्वयं सेवा से करें और आनंद के साथ करें। ऐसे लोग वो लोग होते हैं जो पूरी तरह से अपने पात्र को आशीषों को पाने के लिए तैयार करते हैं। मान लीजिए जब मैं आप कुछ काम करने को कहता हूं, केवल जब आप उसका पालन करेंगे तो आशीषें आ जाएगी। लेकिन क्या आपने पालन किया है? आपकी कार्यशालाओं में और व्यापारों में आशीष मिलनी चाहिए थी अपने मासिक दशमांश हजारों डॉलर्स के साथ। कुछ समय पहले मेरे ऑफिस में किसी व्यक्ति ने अंगीकार किया था कि सीनियर पास्टर, मेरा दशमांश 5,000 डॉलर है, और दूसरे ने कहा था कि मैं 3,000 डॉलर दशमांश देता हूं। एल्डर होने के नाते आपका दशमांश 3,000-5,000 डॉलर होना चाहिए, लेकिन क्या आपने मेरी बात मानी? जब मैंने आपको राय दी थी, सुझाव दिया था कि 10 बार जीवन के बीच श्रृंखला को सुने, क्या आपने पालन किया? आपने कर लिया है, लेकिन मैं अभी की बात नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब मैंने आपको कहा था, क्या आपने तुरंत ही किया? यदि आपने केवल तब पालन किया जब आपने दूसरों की आशीषों को प्राप्त करने की गवाहियों को सुना, उसके बाद उन्होंने 10 बार सुना, वो आज्ञाकारिता नहीं है? आपने हिचकिचाहट के साथ दूसरों का अनुसरण किया जब आपने देखा कि उन्होंने आशीष पा ली है, क्या वो आज्ञाकारिता हो सकती थी? आपको स्वयं सेवा से और तुरंत ही उसका पालन करना चाहिए था। यदि आप एक दिन में पूरी श्रृंखला को सुने तो उसमें केवल 10 दिन लगते। अगर आप 10 दिन में एक श्रृंखला को खत्म कर लेते तो आपको 100 दिनों की आवश्यकता थी। लेकिन क्या मैंने आपको खाली 100 दिन दिए? मैंने आपको बहुत सारे दिन दिए, लेकिन आप ऐसे बहुतों ने 10 बार भी समाप्त नहीं किया। 3 राज्यों के साथ भी ऐसा ही है। मैंने आपको राय दी थी कि आप 2 बार उसे पढ़ें। क्यों यह इतना मुश्किल होना चाहिए? आप में से बहुतों ने अब तक उसे पढ़कर समाप्त कर दिया है, लेकिन उस समय के विषय में क्या है? मान लीजिए आपने तुरंत पालन किया और 2 बार 1 साल में समाप्त कर दिया। मान लीजिए आधे साल में 1 बार आपने पढ़ दिया, तो फिर आप में से कितनों ने आधे साल में 2 बार पढ़कर समाप्त कर दिया? आप में से ज्यादातर लोगों ने आज्ञा उल्लंघन किया। आपने उसे पढ़ना तब शुरू किया जब आपने देखा कि बहुत सारे लोग उमड़ती हुई गवाहियां दे रहे हैं कि कैसे लोगों ने उत्तर और आशीषें और चंगाइयां प्राप्त की। आप पालन करने की इच्छा नहीं रखते, और कुछ लोगों ने तो ऐसा कहा कि सीनियर पास्टर ने ऐसा करने का निर्देश हमें क्यों दिया है, मेरे पास तो समय नहीं है। पिता परमेश्वर जानते हैं कि क्या आपके पास वास्तविकता में समय की कमी थी या नहीं। क्या मैंने आपके बहुमूल्य समय को चुराने के लिए आपको उसे पढ़ने को कहा था? क्योंकि उसका इतना महत्वपूर्ण अर्थ है, इसलिए मैंने आपको पढ़ने को कहा था। पिता परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दी थी, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी इच्छा से कहा होगा। पिता परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दी थी। क्या आपने पूरी बाइबल को पढ़ने की उस आज्ञा का पालन किया? क्या आपको याद है कि क्या निर्देश दिए थे मैंने आपको बाइबल पढ़ने के लिए? मैंने आपको बताया था कि आपको उसे शुरुआत से लेकर अंत तक सावधानी के साथ पढ़ना है और बिना काल्पनिक विचारों के साथ पढ़ना है, और साथ ही आप उसे ऊंची आवाज में पढ़ें ताकि आपके कानों से आपकी आवाज आए और आपके हृदय में जाए। मैंने आपको जोर दिया था कि आप उसे जोर से, सावधानी से, बिना काल्पनिक विचारों के पढ़ें। यदि आप सावधानी से पढ़ते हैं तो यहां तक कि आपका मन भी बहुत अधिक बदल जाता है, उससे आपका माइंडसेट और पोस्चर बदल जाता है। जब आप सावधानी से ना पढ़ें तो आपका जो पोस्चर है वो भी ढीला पड़ जाता है और आप अपनी पीठ को सहारा देने लग जाते हैं। जब आप सावधानी से पढ़ते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप पालथी मारकर बैठेंगे या घुटने टेक कर सीधी पीठ के साथ बैठेंगे। यदि घुटने टेकना मुश्किल है तो आप पालथी मारकर बैठेंगे। ऐसा करने के द्वारा आप अपने हृदय को केंद्रित कर सकते हैं, अपने विचारों को केंद्रित कर सकते हैं। विद्यार्थी सदस्य कहते हैं क्योंकि वो स्कूल जाते हैं इसलिए उनके पास पढ़ने का समय नहीं। दूसरे लोगों के सामने वो जोर से नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैंने आपको कहा है कि आप सावधानी से ऊंची आवाज में पढ़ें। आपको आश्चर्य हो सकता है कि वो कैसे कर सकते हैं जब उनके पास समय की कमी है। हालांकि वे सरसरे तौर पर पढ़ सकते हैं जब वो स्कूल जाते हैं या सड़क पर होते हैं, लेकिन इसका अलग से चौकसी से अध्ययन होना चाहिए। वो चौकसी से आज्ञा मानते हुए अध्ययन कर सकते हैं उन बातों का जैसा मैंने उनको निर्देश दिया है। जब वो स्कूल जाते हैं वो सरसरे तौर पर कर सकते हैं, वो शुरू से कर सकते हैं, जहां कहीं से भी वो चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं, या बीच से या अंत से। और जब उनके पास समय होता है उस वक्त वो चौकसी से अध्ययन कर सकते हैं। वो है आज्ञाकारिता। चौकसी से पढ़ना उसे आज्ञाकारिता है। अगर आप ये कहें कि आपके पास समय नहीं तो वह एक बहाना है। क्या 1 घंटा भी 1 दिन में आपके पास नहीं होता? यदि आप एक घंटा निकाले पढ़ने के लिए तो 3 महीने से भी कम समय लगेगा पूरी बाइबल को पढ़ने के लिए। कुल 80 घंटे लगेंगे और 90 घंटे अगर हम धीरे धीरे पढ़ें और 70 घंटे अगर हम तेजी से पढ़ें और 80 घंटे सामान्य गति से, जिसका मतलब यह है कि 3 महीने से भी कम समय लगेगा यदि आप एक दिन में 1 घंटे पढ़ते हैं। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया था तो भी आपने अंत में आज्ञा उल्लंघन कर दिया। आप में से कुछों ने बाइबल को पढ़ा तो सही, लेकिन पढ़ते पढ़ते सो गए या फिर काल्पनिक विचारों के साथ पढ़ा। वो आज्ञाकारिता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको विशेष निर्देश दिए थे कि आपको कैसे पढ़ना है, केवल तब जब आप उस आज्ञाकारिता के हिसाब से करते। आप में से कुछ ऐसा कह सकते हैं कि आप इतने कठोर क्यों हो रहे हो, लेकिन मुझे होना पड़ता है क्योंकि आज्ञाकारिता बिल्कुल वैसे होनी चाहिए थी जैसे मैंने आपको निर्देश दिया था। आप कैसे पालन कर सकते हैं जैसा आप चाहे जब आप वैसा करेंगे? जब राजा शाऊल ने अपने हिसाब से किया, क्या वो आज्ञाकारिता थी? क्या उसने परमेश्वर के वचन के हिसाब से काम किया था? वो केवल अपने विचारों के हिसाब से चल रहा था, वो आज्ञाकारिता नहीं है। चौकसी से पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप सावधानी से पढ़ेंगे तो वह आपके हृदय में रहेगा, क्योंकि आप सावधानी से बिना काल्पनिक विचारों या किसी और सोच विचारों के पढ़ते हैं। इसीलिए जब आप थकावट महसूस करते हैं उस वक्त आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको अपने बचे हुए समय में 1 घंटा निकालना चाहिए ताकि आप उन वचनों को याद रख सकें, अपने हृदय में अंकित कर सकें। जब आप ऐसे पालन करेंगे तो कोई संदेह नहीं कि आप उसे चौकसी से पढ़ेंगे, और साथ ही वचन को मानना वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। पिता परमेश्वर आपकी इन कामों को, आज्ञाकारिता के कामों को बहुत ऊंचा समझते हैं, इसीलिए वो जिन्होंने मेरे वचन की आज्ञा को मानते हुए सावधानी से वचनों को पढ़ा था, अवश्य ही कम से कम 1 उत्तर या अधिक उत्तर उन्हें मिला होगा, या तो समस्या का समाधान, या फिर चंगाई, या आर्थिक आशीषें, या फिर विश्वास की अत्यंत उन्नति के रूप में। पिता परमेश्वर ने अवश्य ही आपको किसी न किसी चीज में निश्चित रूप से आशीष दी होगी, क्योंकि आपने पालन किया था मेरी बातों को मानने के लिए। इसलिए पिता परमेश्वर आपको आशीष देने में अनदेखा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आज के दिन तक मेरी बातों को निश्चित किया है। अगर आप मेरी बातों को पिता की बातों के रूप में माने तो वो कुछ भी क्यों ना हो, पिता परमेश्वर उन्हें निश्चित करते हैं। मुझे आशा है कि आप अब के बाद आज्ञाकारी बनेंगे। आज्ञाकारिता आशीषें लाती हैं। परमेश्वर का वचन वो निश्चित है। आपके पास आशीषें नहीं क्योंकि आपने पालन नहीं किया, या फिर अगर आपने पालन किया भी तो भी आपने आज्ञाकारिता गलत तरीके से की होगी। मैंने आपको इसहाक के बारे में पहले बताया था जो अंत तक आज्ञाकारी रहा। मान लीजिए पैसा कमाने के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं। मान लीजिए आपके निर्गमन के लिए सब कुछ तैयार किया गया है और मैं आपको कहता हूं कि आप बाहर मत जाइए और कोरिया में ही बिजनेस कीजिए, और आपने हां कहकर पालन किया। मान लीजिए आपने इस बिंदु तक पालन किया, लेकिन अब आपका व्यापार अच्छा जाने के बजाय डूब रहा है, चीजें खराब हो रही है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप कैसा महसूस करते हैं। आपके पास नाराजगी हो सकती है यह सोचकर कि मेरे पास बाहर विदेश जाने का, भविष्य बनाने का अवसर था, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर जाने से रोक दिया और मैंने पालन किया। अब चीजें अच्छी होने के बजाय चीजें खराब हो रही है। इस तरह से संदेह, कुड़कुड़ाहट और नाराजगी रखना यही समस्या है जो आपको उस तर्क को जीतने से रोक देता है। यदि आप विश्वास करें, भरोसा करें और मुझसे प्रेम रखें तो यह मुश्किलें कोई मायने नहीं रखेगी। अगर आप विश्वास करते हैं कि वह स्थिति भलाई में बदल जाएगी और उस स्थिति को अच्छी नजरों से देखें, अच्छी दृष्टि से देखें, एक बार जब आप उस स्थिति से बाहर निकलेंगे तो आप संपन्न हो जाएंगे। इस तरह की स्थिति वो 2 बार या 3 बार आ सकती है। अगर हम यूसुफ की बात करें, 3 बार वो मुश्किलों में पड़ा, यहां तक कि अद्भुत सपना दिखाने के बावजूद भी वो दास के रूप में दूसरों के हाथों में सौंप दिया गया। दास के रूप में जब वो काम कर रहा था, गलत दोष के आरोप में उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाइबल कहती है कि जो कुछ उसने किया वो सब संपन्न हुआ। बहुत सालों पहले नए विश्वासी के रूप में मैं भी आश्चर्य में था कि क्यों बाइबल उसे कहती है कि वह संपन्न हुआ, लेकिन जब मैंने और अधिक पिता के वचनों के बारे में सोचा तो मैं देख पा रहा था कि सारी की सारी बातें संपन्नता में बदली है, दुख में नहीं। हालांकि पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई संपन्नता की ओर करते हैं, लेकिन आप कुड़कुड़ाते हैं, आप एहसास नहीं करते, दुर्भावनाएं रखते हैं और नाराज होते हैं, इसलिए अपने आप को और भी पीड़ाओं में डाल देते हैं। वो विश्वास का काम नहीं है, ना ही आज्ञाकारिता और प्रेम का काम है। आप में से बहुत से उसे पार करने में असफल हो जाते हैं। यद्यपि आप अंगीकार करते हैं कि आप विश्वास से काम करेंगे और बहुत सी प्रार्थनाएं करेंगे उसके विषय में, लेकिन अंत में आप अपने ही विचारों पर निर्भर रहते हैं, अपने ज्ञान और अनुभव पर, और साथ ही किसी और की बातों से भी आप धोखा खा बैठते हैं। इसीलिए अंत में आप अपने ऊपर ही पीड़ाएं लाते हैं। आमीन। वो जो इस बात को समझेंगे वो इस बात से सहमत होंगे। आपको पहचानना है क्या कारण है। आपको जांचना है कि क्या आप आनंदित थे और मुश्किल के समय में आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अपनी प्रार्थनाओं में आपको हमेशा विश्वास का अंगीकार करना है, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालांकि चीजें अच्छी नहीं हैं, लेकिन अवश्य ही आपकी इसमें इच्छा होगी, मैं अभी भी धन्यवादी हूं क्योंकि यह मेरे लिए आशीष बनेगी। यदि भी चीजें बार 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 गलत होती हैं, तो भी आपको धन्यवाद देना है और अंत में संपन्नता का मार्ग आपके लिए खुल जाएगा। बाइबल में हम देखते हैं कि आजमाइशें 3 बार आती हैं। 1 या 2 बार भी हो सकती है, लेकिन अगर बड़ा होगा तो आमतौर पर 3 बार आती हैं। मेरे अनुभव से और बाइबल से आजमाइशें 3 बार आती है किसी महान आशीष के लिए। अगर 3 बार आप उसे पार करें तो आशीष यहां आपके पास आएगी, लेकिन अक्सर 1 ही बार आजमाइश से गुजरने के बाद आप आशीष प्राप्त कर लेते हैं। 1 या 2 बार आजमाइश से गुजरने के बाद आपको उत्तर मिल जाता है, लेकिन जब आजमाइशें 3 बार आती हैं तो वह इसीलिए क्योंकि आशीषें महान हैं। यदि आपको लगता है कि 3 आजमाइशों के बाद भी आशीषें आपको नहीं मिली, तो आपको अपने आप को जांचना है कि क्या आप सही मार्ग पर है। क्योंकि आप सही मार्ग से डगमगा गए हैं, इसीलिए उत्तर आपके पास नहीं आता, उत्तर नहीं मिलता है आपको, क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं से भटक गए हैं या सही मार्ग से। जब आप सही मार्ग पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर आपको मिलेगा। आजमाइश 1 या 2 बार आती है, लेकिन 3 बार से ज्यादा नहीं। जहां तक मेरा मामला है, उत्तर प्राप्त करने से पहले हमेशा 3 बार आजमाइशें आई है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उसे मन में रखें। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य है। समस्या आपके अंदर, आपके हृदय में पाई जाती है, आपके विश्वास में और आपके कार्यों में, आपके अनाज्ञाकारिता में या निंदा और न्याय में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। कृपया आज का संदेश उनमें जीवन और विश्वास बने। उनकी मदद कीजिए कि वह संदेश अपने हृदय की गहराइयों में छाप दें। उनकी मदद कीजिए कि वह संदेश ना भूलें, वरन अपने हृदय में उसे अंकित करें, ताकि मुश्किलों के समय में वो वचन से उसका समाधान कर सकें। कृपया उनकी मदद करें कि वे इस संदेश की रोटी बनाएं। यदि वे आशीषों के ऊपर प्रत्येक संदेश की रोटी बनाएं, तो फिर उनके पास क्या कमी होगी। यदि वे आपके वचन का पालन करें तो यहां तक कि असंभव भी संभव हो जाएगी और संभव और भी अधिक संपन्न हो जाएगी। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। उन्हें आशीष दीजिए कि वे आत्मा देह दोनों में स्वस्थ रहें। धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलिसियाओं में और स्थानीय कलिसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानमिन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा छुड़ा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो, पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटी डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं, तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो, जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं, तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें, वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे, दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो, पिता कोई दाग वहना रह जाए, तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ, पिता मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की, पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो, बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो, दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए, पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं, वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए, उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाए, कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए, पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा, विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए, उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी, अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दें, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।